Iran Radio Podcast. दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के बीच मुकाबला जारी था। इसी दौरान एक और ताकतवर खिलाड़ी मैदान में कूद पड़ा। वर्षों से ब्रितानी शासकों ने इस मुकाबले में कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। भाग कुछ ऐसा था कि जो कारनामा मर्द शासक नहीं दिखा सके वो एक महिला क्वीन एलिजाबेथ ने कर दिखाया। 15वीं सदी में अक्सर समुद्री डकैत ब्रिटिश होते थे। ब्रिटेन में समुद्री डकैती ने 16वीं सदी में देशभक्ति का लिबादा ओढ़ लिया। पिछले साल ही यमन की तेल कंपनी के सीईओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ब्रिटेन और अमेरिका ने राजनैतिक और सामरिक हितों को साधने के लिए समुद्री डकैती का रास्ता अपना लिया है। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि अमरीकी अदालत ने ईरान के 8 लाख बैरल तेल की नीलामी कर दी। उन्होंने ये तेल एक जहाज को जब्त करके हासिल किया था। दोस्तों, दुनिया का इतिहास पॉडकास्ट का ये चौथा एपिसोड है और मैं हूं अहमद अब्बास। आप सबको मेरा सलाम। जब 15वीं सदी के आखिर में पुर्तगाली और स्पेनिश नाविकों ने महासागरों में अपने जहाज उतार दिए, किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 साल में यूरोपीय व्यापारियों की संख्या दुगनी हो जाएगी। दूसरे इलाकों पर कब्जा देखकर दूसरे यूरोपीय देशों के मुंह में भी पानी आने लगा। फ्रांस के किंग फ्रांसिस प्रथम ने मैदान में कूदकर इस खेल को और दिलचस्प बना दिया। उन्होंने यूरोपीय नाविकों की भर्ती करनी शुरू कर दी। उन्होंने 2 नाविकों को उत्तरी अमेरिका की ओर रवाना किया ताकि वहां से चीन के लिए रास्ता खोज निकालें, लेकिन वे चीन नहीं पहुंच सके। उन्होंने कनाडा को खोज निकाला, मगर फ्रांसीसियों के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी। वे हीरे के चक्कर में थे, लेकिन ये सिर्फ एक तमन्ना ही बनकर रह गई और एक मुहावरे में बदल गई। फ्रांसीसी जबान में कनाडाई हीरा दीवाने के सपने को कहा जाता है। ब्रितानी शासक 8वें हेनरी की मौत के बाद उनकी बेटी एलिजाबेथ उनकी जानशीन बनी। हेनरी ने उनकी मां की गर्दन उड़ा दी थी और कुछ समय बाद अपनी दूसरी नई पत्नी का भी सिर कलम कर दिया था। इस घटना ने एलिजाबेथ को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में कभी शादी नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की, जिसका ब्रिटेन की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। 25 साल तक मुख्तलिफ देशों के शासकों ने एलिजाबेथ से शादी के काफ़ी प्रयास किए। 1569 में स्पेन के किंग फिलिप द्वितीय ने एलिजाबेथ का हाथ मांगा, लेकिन उन्होंने इसे रद्द कर दिया। उनका मानना था कि इस शादी से स्पेन का ब्रिटेन पर वर्चस्व हो सकता है। मगर जब फ्रांस के किंग चार्ल्स ने रिश्ता भेजा तो एलिजाबेथ ने एक नई बारी शुरू करने का मन बना लिया। वो चाहती थी कि फ्रांस और ब्रिटेन के रिश्ते अच्छे रहने चाहिए, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को अधर में रहने दिया। कुछ साल बाद ब्रिटेन और फ्रांस के रिश्ते कुछ ऐसे मोड़ पर पहुंच गए कि उन्हें शांत रखने के लिए एलिजाबेथ ने एक फ्रांसीसी से शादी करने का फैसला किया। उस वक्त उनकी उम्र 37 साल थी और उनका हाथ मांगने वाले फ्रांसीसी प्रिंस की उम्र 16 साल थी। इस बारे में बातचीत 5 साल तक खिंच गई और प्रिंस की उम्र 21 तक पहुंच गई। उसके बाद फ्रांसीसी प्रिंस ने लंदन की यात्रा की, लेकिन एलिजाबेथ ने लंदन में उन्हें 5 साल तक और इंतज़ार करवाया। 10 साल बाद ब्रितानी रानी ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। एलिजाबेथ ने फ्रांसीसी प्रिंस का रिश्ता इसलिए अधर में लटका कर रखा कि वो स्पेन के राजा की बेटी से शादी ना कर सके और स्पेन और फ्रांस ब्रिटेन के खिलाफ एकजुट ना हो पाए। برطانوی لوگ اسپین کے لوگوں سے اس لیے ایرشیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ایٹلس مہاساگر کے اس پار امریکی مہادویپ کے کئی علاقوں کو اپنے نینترن میں کر لیا تھا، اسی لیے وہ اسپین کو کمزور کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ پرتگال اور اسپین سے مقابلے کے لیے الیزابیتھ کی ایک دوسری چال اسپینش جہازوں پر حملے کے لیے برطانی سمندری ڈاکوؤں کا استعمال تھی۔ برطانی اس کام کو اسپین کے راجہ کی داڑھی میں آگ لگانا بتاتے تھے۔ برٹش اسپینشوں کا سونا اور چاندی لوٹ لیا کرتے تھے، اس کے لیے ان کا ترک یہ تھا کہ اسپینشوں نے ان سے ریڈ انڈینز کو چرا لیا ہے۔ سمندری ڈکیتی اتنی بڑھ گئی کہ ویاپار اور سمندری ڈکیتی کے بیچ انتر ختم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو اس میں سرکاریں بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ جن ناویکوں کے جہازوں کو لوٹا جاتا تھا انہیں سرکار کی طرف سے خط لکھا جاتا تھا کہ جن دیشوں سے ڈکیت آئے تھے ان کے جہازوں پر حملہ کر کے نقصان کی بھرپائی کی جائے۔ دوسرے یورپی دیش اس طرح کے آدیشوں کو اوپچارکتا پردان کرتے تھے۔ جن ڈکیتوں کے پاس یہ خط ہوتے تھے انہیں ڈکیت کے بجائے ویاپاری مانا جاتا تھا۔ سمسیا یہاں تھی کہ جن جہازوں پر قیمتی سامان ہوتا تھا وہ پرتگالی یا اسپینش ہوتے تھے۔ ان جہازوں پر امریکہ سے سونا اور چاندی لادا جاتا تھا یا پھر ایشیائی دیشوں سے مسالے۔ اس طرح سے اس کھیل میں ہمیشہ برٹین کو فائدہ اور اسپین اور پرتگال کو نقصان پہنچتا تھا۔ اسپین کے کنگ فلپ کو ہر روز اسپینش جہازوں پر برطانی جہازوں کے حملوں کی خبریں ملتی تھیں، لیکن وہ اس پر کوئی سخت کارروائی نہیں کرتے تھے کیونکہ الیزابیتھ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے یا ان کے بیٹے سے شادی کریں گی۔ فلپ کو لگتا تھا کہ شادی کی ایک انگوٹھی سے ان کا برٹین پر ورچسو ہو جائے گا اور یہ سب کچھ مشکلیں حل ہو جائیں گی، لیکن برطانی سمندری ڈکیت ہار ماننے والے نہیں تھے اور ہر دن اپنے حملوں میں اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ برٹین میں اسپینش راجدوت نے الیزابیتھ کے دربار میں پہنچ کر کڑے لہجے میں آپتی جتائی، لیکن الیزابیتھ کی دھمکی اس سے بھی زیادہ گمبھیر تھی۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے یہ حرکت جاری رکھی تو تمہارے راجہ کے بجائے فرانسیسی راجہ سے شادی کر لوں گی اور تمہارے دشمن کے ساتھ گٹھ بندھن کر لوں گی۔ اس کے بعد فلپ نے اپنی آپتی واپس لے لی۔ سن 1586 میں ایک دن مہاساگر کے پانیوں پر سونے کا ایک بڑا بھنڈار ایک پرانے اور بڑے برطانی سمندری ڈاکو کے ہاتھ لگ گیا۔ ایک دن فرانسس ڈریک ہمیشہ کی طرح پانی پر شکار کی تلاش میں تھا کہ اس کی نظر ایک اسپینش جہاز پر پڑی۔ جہاز پشچم سے پورب کی اور چلا جا رہا تھا۔ فرانسیسی راجہ کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے سوچا کہ یہ جہاز امریکہ سے آ رہا ہے اور اس پر قیمتی سامان لدا ہوگا۔ اس نے جہاز پر حملے کا آدیش دیا۔ دونوں اور سے توپوں کے دہانے کھل گئے اور آگ برسنے لگی۔ گھماسان کی لڑائی ہو گئی، لیکن انوبھوی برطانی سمندری ڈکیت کی جیت ہوئی۔ برطانی اسپینش جہاز پر ٹوٹ پڑے اور جہاز پر سوار سبھی لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب جہاز میں لدے خزانے پر ڈریک کی نظر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بڑے بڑے لکڑی کے بکسوں میں سونے کے آبھوشن بھرے ہوئے تھے۔ انکا کے راجہ نے یہ سونا اسپین کے راجہ کو اپہار میں بھیجا تھا تاکہ راجہ اس کی جان بخشی کر دے۔ راجہ نے ایک بڑا کمرہ چھت تک سونے سے بھر دیا تھا، لیکن اسپینشوں نے سونا بھی لے لیا اور اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ انہوں نے راجہ کے اوپر صرف اتنا رحم کیا تھا کہ اسے اپنی موت کے چین کا ادھیکار دیا تھا کہ یا تو زندہ آگ میں جل کر مر جائے یا اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ ڈریک نے اتنا سارا سونا دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ تو بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حملے میں اسے اتنا زیادہ سونا ہاتھ لگ جائے گا۔ اسے اب یہ چنتا ستانے لگی کہ اتنے سارے سونے کو کرے گا کیا، یہ سب بازار میں بیچ دے اور باقی زندگی عیش میں گزارے۔ کتنے ویاپاری مل کر اس سے یہ سونا خرید سکتے ہیں؟ کیا برٹین میں اتنا سونا خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ ہے؟ آخرکار اس نے جہاز کو برٹین کی اور موڑ دیا۔ کنارے پہنچ کر اس نے کوئین الیزابیتھ کو سندیش بھیجا کہ وہ ابھی تک کا سب سے زیادہ سونا اسپینشوں سے چھین کر لایا ہے اور اسے رانی کو سونپنا چاہتا ہے۔ کوئین نے یہ سونا ایک ڈکیت سے لیا اور اسے ایڈمرل کی اپادھی پردان کر دی۔ ڈریک ایک بربر انسان تھا जो वर्षों से महासागर के पानियों पर चक्कर लगा रहा था और ज़रूरत पड़ने पर कहीं दूर किसी द्वीप पर छिप जाता था, लेकिन अब वो क्वीन के सबसे निकट दरबारियों में से एक था। क्वीन एलिजाबेथ को इस सोने की शक्ल में वो धन प्राप्त हो गया जिसकी उन्हें इच्छा थी। उन्हें पूरब की ओर ब्रितानी जहाज़ों को भेजने और हिंदुस्तान में फ्रांसीसी और डच व्यापारियों से मुकाबले के लिए पैसे की ज़रूरत थी और अब ये पैसा उनके हाथ में था। जो सोना ड्रेक ने लूटा था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसका इस्तेमाल करके ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और यूरोपीय देशों से पूरब के दूसरे इलाकों की प्रतिस्पर्धा की। लेकिन पश्चिम की ओर प्रगति और अमेरिका तक पहुंच के जहां के सोने और चांदी के भंडारों पर स्पेन का कब्जा था, अभी मुश्किल काम था। स्पेन के जहाज एटलस महासागर पर नजरें गड़ाए थे और किसी को, खासतौर पर ब्रिटिशों को, वहां जाने की इजाज़त नहीं देते थे, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी सोने की चकाचौंध देखी थी। जब फ्रांसिस ड्रेक के स्पेन के सोने पर हाथ साफ करने की खबर वहां पहुंची तो पूरे स्पेन में ब्रिटेन के खिलाफ नफरत का माहौल गर्म हो गया। स्पेनिश राजदूत ने जब एलिजाबेथ के सामने यह मुद्दा उठाया तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और उसे आश्वासन दिया कि वो अपने दोस्त स्पेनिश राजा के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगी। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि बेल्जियम से हथियारों की खरीदारी का समझौता किया जाए, और जब उन्होंने अपनी सेना को नए हथियारों से लैस कर दिया तो जहाज़ पर एक पार्टी का आयोजन किया और स्पेनिश राजदूत को वहां आमंत्रित किया। पार्टी में फ्रांसिस डेरेक भी मौजूद था, जिसे क्वीन ने आदेश दिया कि वो उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाए और उसके बाद उसकी तलवार को उसके दाहिने और बाएं कंधों पर रखा। इसका मतलब ये था कि क्वीन ने उसे द नाइट के खिताब से नवाजा है। उसके बाद क्वीन ने उसे आदेश दिया कि अपने जहाज़ों को एटलस महासागर के दक्षिण की तरफ ले जाए और अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर से गुजरकर प्रशांत महासागर तक पहुंच जाए और मेगलान की तरफ ज़मीन का चक्कर लगाए और फिर ब्रिटेन वापस लौटाए। जहाज़ पर पार्टी के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने एक निजी बैठक में बताया कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली बात का मकसद लंदन में मौजूद स्पेन के जासूसों को गुमराह करना था, जबकि डेरेक की असली जिम्मेदारी मेगलान या मेजलान स्ट्रेट से गुजरकर दक्षिणी अमेरिका से उत्तर की ओर बढ़ना था। डेरेक को जंग का ऐलान किए बिना ही स्पेन के जहाज़ों पर हमला करना था ताकि उस इलाके में स्पेन की ताकत कमज़ोर पड़ जाए और ब्रिटेन की स्थिति मजबूत हो जाए। आखिरकार स्पेन के राजा के सब्र का प्याला लबरेज हो गया और उसने ब्रिटेन के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया। राजा को ब्रितानी जहाज़ों को नष्ट करना था, अपने सैनिकों को ब्रिटेन के तटों पर उतारना था, क्वीन को कैदी बनाना और स्पेन का जो सोना लूटा गया था उसे वापस लौटाना था। राजा ने आदेश दिया कि जो जंगी जहाज अमेरिका के तटों पर थे वो भी स्पेन वापस लौट आए ताकि इस जंग में भाग ले सकें। स्पेन की जल सेना ने ब्रिटेन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी थोड़ी दूर भी नहीं गई थी कि भयानक तूफान आ गया। तूफान में स्पेन के जहाज नीस्तो नाबूद हो गए और फौजी समुद्र में डूब गए। जो जहाज बाकी बचे थे उन पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। स्पेन की जल सेना का एक बड़ा हिस्सा इस जंग में नष्ट हो गया। अब ब्रिटेन के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं थी जो पूरब की तरफ उसके जहाज़ों को बढ़ने और पश्चिम में अमरीका तक पहुँचने से रोक सके। ब्रितानियों ने पहले कैलिफोर्निया पर कब्जा किया और उसके बाद उस इलाके को खोजा जिसे वर्जीनिया कहा जाता है। वर्जिन यानी कुंवारी लड़की, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी, उनके सम्मान में इस इलाके का नाम वर्जीनिया रख दिया गया। एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम था। जेम्स ने अमरीका पर ज़्यादा ध्यान दिया और नए इलाकों की खोज के लिए ज़्यादा लोगों को वहाँ भेजा। ब्रितानियों ने न्यू एम्स्टर्डम को डच से छीन लिया और किंग के भाई के सम्मान में उसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया। अमेरिका के पूरब में स्थित इलाकों का नाम रानी के सम्मान में मैरीलैंड रखा गया। अमेरिका में अक्सर इलाकों के नाम ब्रिटिश शहरों और इलाकों या राजशाही परिवार के नाम पर हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।